قرآن پاک کی اصطلاح ہے، یعنی احسن اسلام، اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا. ایک شخص کا اسلام تو یہ ہے کہ وہ محض مارے باندھے فرائض، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. اس میں اس کی دلی آمادگی اور دلی جذبہ شامل نہیں ہے. لیکن اگر عبادات کے معاملے میں پورے شوق اور جذبے سے فرائض انجام دے رہا ہے، نواحی سے طبیعت کی پوری آمادگی کے ساتھ احتراز یعنی اعتراض کر رہا ہے، سمجھے ہیں جملے کو؟ عبادت کر رہا ہے پیار سے، اور جس چیز سے رکنا ہے اس سے خوشی سے رکے. نفلی عبادات پر بھی بھرپور توجہ ہے، تو گویا اس کا اسلام درجہ احسان کو پہنچ گیا. سورت البقرہ کی آیت دلیل میں 112، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. دعا کرے اللہ میں مسلم بنا لے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس آیت سے بھی آپ کو یہ درجے ملتے ہیں. سب سے پہلے آپ اور میں مسلم ہوتے ہیں، متیس، سرنڈر ٹو گاڈ. پھر وہ ہوا محسنا، یہ آخری درجہ. پھر وہ محسن بنتا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، پھر اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کیا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ جب ہمارا اسلام احسان میں ڈھل جاتا ہے نا، تو دنیا میں بھی آپ بے غم بے خوف، ٹینشن فری زون بن جاتی ہے آپ کی زندگی. وجہ کیا؟ کہ ہم اللہ کا حق اللہ کو دے رہے ہیں، بندوں کا بندوں کو دے رہے ہیں. احسان پتہ کیا ہے؟ حق والوں کے حق ان کو ادا کرو. جہاں اللہ کا حق ہے، لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی نہیں ماننی. 3 سیکنڈ چپ رہوں بلکہ 6 رہ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، کیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض تو نہیں کرتی؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں نا، رشتہ داری کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، پہلا بیٹا ہے، آخری بیٹا ہے، وہ بھی آئے تھے، گفٹ دینے جا رہے ہیں، مجبوری ہے. اتنی طویلیں آپ کے پاس اپنے رب کو ناراض کرنے کی؟ حالانکہ مومن کون ہے؟ کانہ کترہ ہو، رب سامنے دکھ رہا ہو تو آپ کسی کی گناہ کی آفر قبول کریں گے؟ اور آپ رب کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کسی کی چیز معروب کرے گی؟ یہ ہمارے ایمان کا ضعف ہوتا ہے. تو لہٰذا کیا کریں؟ لوگوں کو لوگوں کا حق دیں، بندوں کو بندوں کا دیں. اور یہاں پھر ایک چھوٹی سی بات، ہمارے دل کے کتنے خانے ہیں؟ سائنس کی زبان میں تو 4 خانے ہیں، اور روحانیت کے اعتبار سے یا اسپرچویلٹی کے اعتبار سے ہمارے دل کے کتنے خانے ہیں؟ جتنے رشتے، جتنی نعمتیں، 4 بچے 4 خانے، 5واں شوہر، ماں باپ، بھائی بہن، پھر بے جان چیزیں، گاڑی، گھر، بنگلہ، جو کچھ ہے. یعنی وہی بات ہے، زین للناس حب الشہوات، وہ سارے خانے ہیں. یہ سارے خانے بھریے، پیار کریں بچوں سے، گھروں سے کریں، کپڑوں سے بھی کریں، کھانے پکانے سے بھی کریں. آپ کا حق ہے، اللہ نے خود کہہ ڈال دی دلوں میں. لیکن ایک خانہ ہمیشہ خالی رکھنا ہے، بیچ کا سب سے بڑا، اس کو لب کہتے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک محسن کون ہے؟ کہ جو اللہ کا خانہ کبھی کسی کے نام نہیں کرتا. اسی ٹرپ میں، پہلا لیکچر میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی دی تھی کہ کبھی ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسی رشتے کی آزمائش لے آتا ہے، اسی بچے کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیتا ہے. جس کو آپ ویک پوائنٹ بناتے ہیں نا، اللہ آپ کو اسی سے توڑتا ہے. کسی بچے کو ویک پوائنٹ نہ بنائیں. ایک بیٹا ہے، اللہ زندگی دے، مت دیکھیں اس کو زیادہ، مت امیدیں لگائیں. ایک بیٹی ہے، مت کیوریس رہیں، اللہ نے آپ کو ادھر سے ہی توڑنا ہے. بڑے معاملے تو اللہ نے دنیا میں ہی پورے کرنے ہیں. آپ کسی کی بیٹی کو ستائیں اپنی جوانی میں، آپ کے بڑھاپے میں کوئی آپ کی بیٹی کو ستا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو لہٰذا انسانوں کو اللہ کی جگہ پہ نہیں لانا، یہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے. تو پیار کریں، رشتے نبھائیں، قطع رحمی نہیں کرنی. صلہ رحمی رحم سے جڑی ہوئی ہے، عرش سے جڑی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں. میں تو صرف آپ کو ہنٹس دے رہی ہوں اس بات کے کہ آپ نے احسان کے درجے پہ لے کے آنا ہے. اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اسلام سے احسان کی بات تھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. دراصل نہ تو تمہاری کچھ خصوصیت ہے، ना किसी और का हक़ ये है कि जो भी अपनी हस्ती अल्लाह को इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं है। मुराद यह है कि आप अल्लाह के बनते जाएं तो दुनिया में भी मसले ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। इसी ज़िमन में एक और मुकाम सूरत निसा का है, फरमाया आयत 125, वमन अहसनुद्दीन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। जितना रश्क कर सकें इब्राहीम पे कर लें, जितना अल्लाह ने उनको खिराज तहसीन पेश किया। कैसे? इस शख्स से बेहतर और किसका तरीका ज़िंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम के तरीके की पैरवी की, इस इब्राहीम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। आप इस जुमले को बदलें, जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया था। फ़र्क है, एक है कि बंदा अल्लाह को दोस्त बनाए, ये भी बड़ी बात है, लेकिन दूसरा ये कि अल्लाह उस बंदे को अपना दोस्त बनाए, बड़ी बात कौन सी है? देखिए, जो मशहूर लोग होते हैं उनको तो सभी जानते हैं, उनको किसी का याद रह जाए ये बात है ना। अल्लाह आपको दोस्त बना रहा है ये बड़ी बात है। असल बात यह है कि अल्लाह की नज़रों में जचने का नाम एहसान है। अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड कोई हल्का तो नहीं होगा ना। जैसे आप देखिए, दुनिया में इंसान जितने आला दर्जों पे जाता है ना, पढ़ लिया, दौलत आ गई, फिर उतनी दोस्तियों के स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, कपड़ा लत्ता बदल जाता है, गाड़ियाँ बदलती हैं, घर का कम्फर्ट लेवल बदलता है। किसी के पास इब्तदाई देना जॉब के, चले आप मिसाल एक डॉक्टर है, शुरू में पैसे नहीं होते डॉक्टरों के पास, ये मैं आपको लिख के बता सकती हूँ। हाउस जॉब और पढ़ाई में सारा कुछ लग चुका होता है और माँ बाप ना हो तो कर्ज़े ही लेने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं है पास, अभी और भी पढ़ना है, अभी और भी सीखना है। आप की शादी होगी उस मर्द के साथ, एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट लेके उस बेचारे ने आपको रख लिया, 2-3 साल सब्र शुक्र किया, आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिस लगी, काम हुआ, आप क्या होगा अफोर्ड कर सकते हैं, एक कमरे से आप 2 में नहीं जाएंगे, कम से कम फिर आप कहेंगे 3 कमरे तो होना, फिर फर्नीचर बदलता है। बात को समेटूं, जब किसी की दौलत बढ़ती है तो हमें कैसे पता चलता है? कोई बोल दे, उसका रहन सहन अच्छा हो जाता है, स्टैंडर्ड अच्छा होता है, पहले मोटी वायल पहन लेता था, अब पतली लॉन में भी गर्मी लगती है, ऐसे ही है ना। पहले बसों में भी जाता था, अब गाड़ी में भी मुश्किल लगता है, अब गाड़ियाँ मिल गई फिर भी नहीं आता, ठीक है ना। बस यहाँ आप रुकिएगा, जिस तरह दुनिया की दौलत बढ़ती है ना तो बंदे का लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, इस तरह जब तकवे की दौलत बढ़ती है ना, एहसान के लेवल पे पहुँचती है, तो नेकियों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है। 5 नमाजें पढ़ूँ, लो ये तो सारे पढ़ते हैं, मैं तो स्टैंडर्ड की पढ़ूंगा, अच्छा फिर मैं 6 पढ़ती हूँ, अब 6 पढ़ी नहीं, बहुत सारे लोग हैं 6 पढ़ते हैं। साहब आते थे अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी अमीर लोगों के पास माल बहुत है, हम भी तो इबादत करते हैं वो भी करते हैं, हम भी तहज्जुद पढ़ते वो भी पढ़ते, हाँ वो माल खर्च करके दर्जे ले रहे हैं, याद है हदीस किसी को। फिर आप नेकियों में कम्पीट करते हैं, छोटी नेकी ये तो सब करते हैं, मैं तो आम कर, अच्छा खुशहाली के दिनों की नेकी जब मेरे लिए बहुत ईजी है, नहीं ये तो सब करते हैं, मैंने उस दिन ये नेकी करनी है जिस दिन मेरे लिए मुश्किल है। आपकी नेकियों का लेवल एक्सट्रीम पे चला जाए ये एहसान है। आप अपनी हर नेकी को कहें हक, तो यह कि हक अदा ना हुआ, और अपने ही कंधे थपथपाना बहुत नेक हैं, बहुत कुछ कर लिया, आप कोई और कर ले, हम तो अब कर चुके, और हमसे तो सही होता भी नहीं, ये भी शैतान है। आप ही अपने काम को बेहतर करेंगे तो एहसान का दर्जा आपके अंदर आपकी जगह पर आएगा, और अगर आप नए लोगों पे काम डाल के खुद अपने आप को पीछे कर लें तो याद रखिए जवाब दे होंगे। याद रखिएगा ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखें। अब ये आता कैसे है, अब मैं बस इसको वाइंड अप कर रही हूँ और टॉपिक पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक आयत ज़रा देखिए, सूरत मायदा 93, लैसा अलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती जुनाहुन, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं आप, एक मजमून पूरा हुआ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, क्या हुआ, फी मताइमू, जो कुछ खाया पिया था उस पर क्या है, कोई गिरफ्त ना होगी। यानी पिछली ज़िंदगी में जो उन्होंने कर लिया, जो उनसे हो गया, अल्लाह नहीं पूछेगा। पहले तो अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे से पिछली ज़िंदगी में जो भी कमी बेशी होगी उस पे ना पकड़ना। शर्त एक है, वो नोट करें, इज़ा मत्तकौ वामनू वामिलु सालिहाती सुम्मत तकौ वामनू सुम्मत तकौ वाहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अब एक स्ट्रेच में सुनिए इसका तर्जुमा। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इस पर कोई गिरफ्त ना होगी, बशर्ते के वो आइंदा इन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं, और ईमान पर साबित कदम रहें, दूसरी बात, और तीसरी, और अच्छे काम करें, चौथी, फिर जिस जिस चीज़ से रोका जाए इससे रुकें, और पांचवी, जो फरमाने इलाही हो उसे माने, छठी, फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर अल्लाह नेक लोगों को और मुहसिनों को पसंद करता है। ये है रेसिपी, अगर आपको मैं उस तरह समझा सकूं जो इसका हक है। तफसीर तो नहीं कर रही इस वक्त, लेकिन सिर्फ आपको एक फीलिंग दूं, ये 6 काम मुझे और आपको करने हैं तो फिर मुहसिन बन जाएंगे इंशाल्लाह। आज जाकर घर में बैठकर इस आयत पे गौर कर लें। 1 2 मैंने बोल दिया, अपने ऊपर एक एक चीज़ चिस्पा करते जाइए। ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक अमल करते हैं टूटे फूटे, हराम से रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान पे साबित कदम है बड़ा मुश्किल, फिसलने वाला रास्ता, ये सबसे मुश्किल है। अच्छे काम करते हैं कोशिश, जिस चीज़ से रोका जाए उसे रुक रही हूँ, इरादा तो है, नीयत भी है, और जो अल्लाह कहता है उसको मानती हूँ, ठीक है, कोशिश है, और फिर अल्लाह से डरते हुए लोगों से नेक रवैये रखें, बुराई को भलाई से बदलें, इत्फ़ा बिल्लती आसन। ये काम करते करते ये पसीने आ जाते हैं बंदे को, ये आसान नहीं, ये दुनिया एक पुल सरात है, ये दुनिया का पुल सरात है इंसानों में जीना, अकेला रहना बहुत आसान है। यहाँ आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अन्फुस व बशिरिस साबिरीन। पहले आप साबिर बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन बनते हैं, लेकिन हर अमल का एहसान अलग होता है, ये अब बताने लगी हूँ। आपकी नमाज का एहसान कि आप अपनी नमाज को बेहतर कीजिए, आपके अखलाक का एहसान के अखलाक बेहतर हो, मामलात का एहसान क्या हो, कोई हो सकता है इबादत में मोहसिन हो लेकिन मामलात में फेल होगा, पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, वहां जाके शर्मिंदा होगा। अल्लाह अकबर, एक शख्स नबी के दौर में शहीद हो रहे हैं और आपने कहा कि ये जहन्नुम में जाएगा, औसुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, नबी के साथ जंग में जिहाद, और वही हुआ कि वहां से हथियार पकड़ा, खुदकुशी कर ली। अल्लाह की नजर यहाँ है, या नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शाह रग से भी करीब हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो एक लफ्ज़ भी निकलता है तो लिखने वाला उसको लिख लेता है, और वो लिख लेता है, और उसको क़यामत के दिन क्या करेगा, कुल्ला इंसान इन अल्ज़म ना हो फी उनके वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत 13-14 होगी, 2 आयतें हैं, या 12-13 या 13-14, फिर जाके देख लीजिएगा आप। अल्लाह ताला ने क्या कहा आपको मुझे, आप क्या करें अपनी ज़िंदगी में, हर लेवल पे एहसान की कोशिश करें, बचते बचाते ज़िंदगी गुजारें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। सोचें तो सोच के बोलें, खाएं तो सोच के खाएं, पेट में सिर्फ टेस्ट के नाम पे हराम लुक में ना चले जाएं, लोगों से बात करें डरते करें, यकीन करें, हमारे सारे रिश्ते जो है ना एक दूसरे से, ये हमारे लिए कल इम्तिहान के पर्चे हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, जिसको नहीं मिला वो शुक्र करेगा कि अल्लाह मेरे पे हक कोई नहीं है किसी का। कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसूलुन, तुम में से हर एक चरवा है और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा। और एक जुमला मैंने 5 साल पहले भी इसी शहर में कई बार बोला हुआ, आज फिर सुन लें, हमारा हर बच्चा इम्तिहान का एक पर्चा, आपको उसमें इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, एक बच्चे को हाफिज बना के आपको एहसान के दर्जे पे जन्नत मिल गई और दूसरे को आपने नमाज भी नहीं सिखाई, ये नक्स की बात है। अपने हर मामले को सीधा करें। तो ये थी वो हदीस जिब्रील का वो हिस्सा, अगली स्लाइड पे देखिए कि जो हज़रत जिब्राइल ने नबी सल्लम से पूछा था, फ़ख़बिरनी अनिल एहसान, अब आप मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया, अंताबुदुल्लाह का अन्नक तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आपने फरमाया एहसान ये है कि तुम इस कैफियत में अल्लाह की बंदगी करो, गोया तुम इसे देख रहे हो, बस अगर तुम इसे नहीं देख रहे, ये कैफियत पैदा नहीं हो रही, तो फिर ये तो याद रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, अंतामला लिल्लाह, कि तो अमल करे अल्लाह के लिए, मेहनत करे तो अल्लाह के लिए। और ये तीन अल्फाज, अंतामला लिल्लाह, अमल करो तो अल्लाह के लिए, खशियत रखो खौफ तो अल्लाह का, बंदों से नहीं डरे, सारी दुनिया मुकाबले पे आ जाए और एक रब काफ़ी है मेरे लिए, और अंतामल लिल्लाह, अल्लाह के लिए अमल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एहसान ये है कि तुम इस कैफियत में अल्लाह की बंदगी करो, या दूसरे लफ्ज़ों में इस कैफियत में अल्लाह से डरो, इसकी राह में जिद्दोजहद और भाग दौड़ करो, गोया तुम इसे देख रहे हो। ये असल में ईमान और यकीन की इंतहाई कैफियत है। बहरहाल किसी बंदे मोमिन के दिल में ये यकीन पैदा हो जाना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये भी एहसान पर फायज होने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर इससे भी आगे ईमान और यकीन में गहराई पैदा हो जाए कि बंदे मोमिन को ये एहसास हो गोया वो खुद अल्लाह ताला को देख रहा है, तो ये तो इससे भी आगे की चीज़ है। ये सारे लेक्चर का खुलासा हो रहा है, आपको भी अंदाज़ा होगा। चुनाचे बाद सहाबा की तरफ से इस किस्म की बातें कही गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आते और सहाबा कराम से कुछ गुफ्तगू होती, किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो बयान करता, इसके अलावा सवालों जवाब भी होते थे। एक मरतबा आपने एक सहाबी से दरियाफ्त फरमाया, कैफ असबहता, आज तुमने किस हाल में सुबह की? तो इनका जवाब बड़ा गैर मामूली था, असबहतु मोमिनन हक्का, मुझे तो आज सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई। आपने पूछा, फमा हकीकत ईमानुक, तेरे ईमान की हकीकत क्या है? यानी ये जो तुम कह रहे हो कि तुम सच्चे मोमिन हो, सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई, तो इसकी हकीकत और कैफियत क्या है? अब सहाबी का जवाब सुनिएगा, कहने लगे, मेरे यकीन की कैफियत ये है कि गोया कि मैं अपने रब के अर्श को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और गोया अहले जन्नत को जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए, और अहले दोजख को दोजख में अजाब से दो चार होते हुए देख रहा हूँ। आपको मुझे भी यही यकीन है। हज़रत अली का भी मुझे कॉल याद आ गया, कहते हैं कि गैब के पर्दे को फाड़ कर अल्लाह मेरे सामने भी आ जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। क्यों? पहले ही मोहसिन के दर्जे पे हूँ, कान्ना कतरा हो। अल्लाह करे मुझे आपको अल्लाह की मौजूदगी का इतना एहसास हो जाए। लिहाजा अगर अल्लाह के लिए जिद्दोजहद और भाग दौड़ करते हुए, अल्लाह से डरते हुए, इस्तेहदारुल्लाह फिल कल्ब, इस्तेहदारुल्लाह क्या होता है? अल्लाह के हाजिर होने का एहसास, ये कैफियत अगर दिल में हो, आसान जुमला भी बोल देती हूँ, लिहाजा अगर अल्लाह के लिए जिद्दोजहद और भाग दौड़ करते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के दिल में हाजिर होने की ये कैफियत पैदा हो जाए और इबादत में हुसन और निखार पैदा हो जाए, तो ये दर हकीकत एहसान है। दूसरे लफ्ज़ों में सलूके मोहम्मदी, सलूक किसको कहते हैं? ये वो सलूक नहीं है जो उर्दू में हम किसी के साथ करते हैं। सलूक कहते हैं रास्ते को, तरीका, मसलक, साला का, सालिक कहते हैं चलने वाले को, यानी तरीका मोहम्मदी है। नबी सल्लम का मसलक ये था, और ये यकीन की गहराई से पैदा होता है। किसी ने खूबसूरत बात कही, दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। यानी दिल और दरिया जो है ना, ये समंदरों से भी गहरे होते हैं, यानी दिल बड़ी गहरी चीज़ है। दिल में किसी के क्या है कौन जाने। आप देखिए क्या मद्दोजजर नहीं उठते रहते दिल में, कभी आंसू उबल आते हैं, कभी खुशी से आप जाते हैं। वाकई ये दिल दरियाओं और समंदरों से भी ज़्यादा गहरा है, और जब ईमान इस गहराई में जा गुज़ीन हो जाए तो ये एहसान है। एहसान जिससे कोई अलहता और मसनूई शय नहीं है। समंदर पे आप में से कौन कौन गया कभी? सारे गए होंगे, कौन नहीं गया जिससे कभी समंदर ना देखा हो? कोई भी नहीं है ना। कभी अब जाएं, नेक्स्ट टाइम को छुट्टियां आ जाएं, बच्चों को, फैमिली को, मियाँ के साथ लेकर सब जाइए, वहाँ खड़े होकर चेक करें ये किसने बनाया, ये समंदर किसके हुक्म से किनारों पे आके रुकता है, फिर आपको एहसान समझ आएगा। आपने भी अपनी, मेरी, अपनी, हमने सरकशियाँ छोड़ कर रब के आगे घुटने टेक देने हैं कि मेरा रब मुझसे ये चाहता है। और याद रखिए कि नबी सल्लम ने लोगों को एहसान की तालीम और तरबियत दी, इनका तज़किया किया और इनसे क़ुर्ब इलाही के मराहिल तय करवाए। मेरा आपका अल्लाह से यही गुमान होना चाहिए, दुआ भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को भी एहसान के इन आला दर्जों पे फ़ाइज कर दें। चलिए भाई, जज़ाकल्लाह खैर वसन जज़ा, अल्लाह ताला आपको मुझे एहसान के लेवल पे पहुंचने वाला बनाए, हाई अचीवर्स बने और गेट मोर फ्रॉम लाइफ, गेट मोर फ्रॉम योर स्किल्स, गेट मोर फ्रॉम योर बाउंडीज। अल्लाह ने तो आपको मुझे कूट कूट के नेमते दी हैं, अब ये मेरा आपका काम है, इस ज़िंदगी को आराम में, सहूलतों में गुजार लें, दुखों में गुजार लें, रो रो के, बीमारियों में या डिस्ट्रैक्शन में गुजार लें, बी फोकस्ड, यू विल रीच समवेयर। अब मेरी आपकी ज़िंदगी का वो दौर शुरू हो चुका है कि जिसमें अब हमें ये तड़प लग जानी चाहिए कि हमने अल्लाह को मिलना है, तो बी रेडी टू मीट हिम। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ